Surgió Me.
नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज चर्चा का विषय है प्रारंभ 2026 नए आयकर अधिनियम पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान। चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। शुभमोय, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
शुभमोय, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की मौजूदगी में आज प्रारंभ 2026 अभियान शुरू किया गया। चलिए सुनते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कार्यक्रम के दौरान क्या कहा।
द इनकम टैक्स एक्ट 2025 ऑब्वियसली रिप्लेसेस द 1961 एक्ट इन मेकिंग इट सिंपलर एंड फेयर एंड क्लियर विद ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर आल्सो बीइंग गिवन फॉर पीपल टू यूज इट विल सर्टनली सेट द ट्रेंड फॉर इंडिया टू बी सीन एज अ वेरी टैक्स फ्रेंडली कंट्री।
तो शुभमोय, ये क्या अभियान है और ये क्यों शुरू किया गया है?
आपको जैसे पता होगा कि नए इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रावधान जो लाए गए हैं वो मोर और लेस शुरू होते हैं 2026 के 1 अप्रैल से, यानी कि कुछ ही दिन आगे की बात कर रहे हैं जब ये शुरुआत हो जाएगा, जो ये कंट्री में हम एक नया इनकम टैक्स एक्ट मिलेगा। और ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चल रही इनकम टैक्स एक्ट है, उसके बदले में ये नया एक्ट शुरू होगा। तो ये जो नया एक्ट आया है इनकम टैक्स एक्ट का, ये अभी नेचुरली कहां 1961 वो जो चीज था कहां वो, और आज जो हम 21वीं सदी के बीच में आ गए हैं, इंडियन इकोनॉमी का जो रूप है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इनकम टैक्स एक्ट जो नया बनाया गया है उसका ये अभी नया इकोनॉमी को एड्रेस करने के लिए है, और यही जो पहले इसी चीज को प्रारंभ के हिसाब से भारत सरकार इसको डिफाइनिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सही चीज है लोगों के लिए, ये समझने के लिए क्लियर होता है कि अभी हमारा इनकम टैक्स का एक नया प्रारूप, एक नया कार्यक्रम, एक नया पहल शुरू हुआ है।
जैसा आपने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा और ये 1961 के अधिनियम की जगह लेगा, तो जाहिर है कि इसके लगभग 60 साल बाद ये इसमें बदलाव आए हैं। तो ये कारण क्या है, ये बदलाव क्यों लाए गए हैं और आप क्या कुछ इसके मुख्य हमको विशेषताएं बता सकते हैं?
सबसे पहले जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये नया इनकम टैक्स एक्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन चीजों पर ध्यान देता है जिन चीजों पर पहले हमारे पास कोई इस पर कोई खास प्रावधान नहीं थे। मोटा मोटी इसमें इस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत सारे इसके जो डेफिनेशंस हैं जिनमें बहुत सारे कोर्ट केसेस चलते, फिर बहुत सारे अमेंडमेंट्स की वजह से बहुत सारे जिसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए थे उनको सरल किया गया है। इन सभी चीजों को चलते हुए प्रारंभ का जो हम नाम इसलिए देते हैं क्योंकि खासकर इनकम टैक्स एक उन तबकों के लिए बहुत जरूरी होता है जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स लंबे दौरे की तरफ स्टेडी रहे, स्टेबल रहे और उनके लिए सुचारू रहे, ये बहुत जरूरी है। और इस तरफ भारत सरकार का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे जो नए प्रावधान लाए गए हैं, नए सिंप्लीफिकेशन किए गए हैं, डेफिनेशनल चेंजेस लाए गए हैं, वो इसीलिए किया गया है।
इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं अपने श्रोताओं के साथ कुछ आंकड़े साझा करना चाहती हूं। जैसे शुभमोय भी बता रहे हैं कि पुराना जो अधिनियम था उसको सरल बनाया गया है, तो सरलीकरण जो प्रक्रिया है उसका थोड़ा अंदाजा मैं देना चाहती हूं। नए अधिनियम में अनावश्यक प्रावधानों को और पुरानी जो टर्मिनोलॉजी थी उनको हटा दिया गया है। 1961 के एक्ट में 47 चैप्टर्स थे जबकि 2025 के कानून में 23 चैप्टर्स हैं। 1961 के एक्ट में 819 सेक्शन थे जबकि नए एक्ट में सिर्फ 536 सेक्शन है। और अगर हम शब्दों की संख्या की बात करें तो पुराने एक्ट में 5,12,000 शब्द थे जबकि उनको घटाकर अब नए एक्ट में 2,60,000 शब्द उसको कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही नए एक्ट में कुछ नई टेबल्स और फॉर्मूले भी पेश किए गए हैं ताकि जो एक कानूनी भाषा होती है उसको सरल बना दिया जाए। तो शुभमोय, जैसा आप बता रहे थे कि एक तब स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम एक आम नागरिक की बात करें, हमारे और आपकी जैसे आम नागरिक की बात करें, तो ये जो नया अधिनियम है ये आयकर को फाइल करने की प्रक्रिया को या रिवाइज्ड फाइलिंग को या रिफंड क्लेम जैसे चीजों को कैसे और आसान बनाता है?
देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में जो मूलभूत बदलाव आया है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार के कई सारे कदमों की वजह से इनकम टैक्स एक्ट की जो चलन है, ये जो चलन है वो अभी बहुत सारे जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए उनके ऊपर से उसका इफेक्ट हट गया है और ये बहुत बड़ी चीज है, जिसलिए भारत में अभी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डायरेक्ट की इनकम टैक्स फाइलर्स उनके संख्या बढ़ गए हैं, लेकिन इनकम टैक्स देने के लिए जो लो इनकम ग्रुप्स थे उनको जो जरूरत था वो हट गया है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल वित्त मंत्री जी ने 12 लाख रुपए के एनुअल इनकम तक के लोगों को इनकम टैक्स से फ्री कर दिए हैं, मुक्त कर दिए हैं कि उनको इनकम टैक्स फाइल नहीं कर, उनको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और साथ में ही उसके साथ बहुत सारे ऐसे चीजें रूल्स में बदलाव लाए गए जिनके वजह से उनका पूरा प्रोसेस को सिंप्लीफाई नहीं, बहुत सारे जगह पे एग्जेम्पशंस कर दिया गया। तो इनकम टैक्स अभी किन के ऊपर लागू होता है? आप कह रहे थे साधारण नागरिक, ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि भारत में साधारण नागरिक बोल के हम जब बोलते हैं तो उनके ज्यादातर लोगों के ऊपर इनकम टैक्स का प्रेशर हट गया है, उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाने की, इनकम टैक्स के डिटेल्स करने का, साल में मतलब आमदनी अठन्नी लेकिन रिटर्न देने में एक रुपया खर्च हो जाता था, वो चीज हट गया है और ये सच में एक बहुत बड़ी बदलाव है।
बिजनेस, कॉरपोरेट और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इस नए अधिनियम में क्या बदलाव है?
एक तरफ तो हम कॉरपोरेट्स वगैरह की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जो स्टार्टअप वाले जो छोटे छोटे हम एमएसएमई सेक्टर के जो कंपनियां स्टार्टअप कर रहे हैं भारत के तमाम जगह से, उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट में जो नए जो रूल्स आए हैं, जो नए एक्ट के जो प्रावधान आए हैं, वो बहुत बड़े बदलाव लाए हैं। नया इनकम टैक्स में इसीलिए प्रारंभ से इसको जोड़ा गया क्योंकि आपको याद होगा 1921 में प्रारंभ स्कीम बनाया गया था स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, वही इकोसिस्टम वही प्रारंभ वाला चीज भारत सरकार अभी फिर से उसी को जोड़ रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में अभी जो बदलाव आया है वो भी उनके लिए एक ब्रिज, एक सेतु बन जाता है कि सरकार की जो पुरानी जो प्रॉमिस थी उसको साकार किया जा रहा है। आज का जो प्रारंभ वाला अनाउंसमेंट है, प्रारंभ की जो बातें चल रही है, वो इसलिए बहुत ज्यादा जुड़ी हो जाता है। तो सेकंड वाली चीज जो आप कह रहे थे कि कंपनीज के लिए या जो एस्टेब्लिश्ड इन्वेस्टर्स है, तो इनके लिए बेसिकली क्या किया गया है तो कि बहुत सारे जो हमारे पुराने जो प्रावधान थे, खासकर एग्जेम्पशंस वाले, ये एग्जेम्पशंस के बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे बहुत सारी चीजें थे जो आपको बजट के फिगर्स में देखेंगे कि इसके चलते भारत सरकार के करीब 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का घाटा होता था। क्यों? क्योंकि ये सारे एग्जेम्पशंस कोई खास फायदा नहीं देते थे, लेकिन ये सारे इनकम टैक्स एक्ट में चारों तरफ बिखरे हुए थे, तो इनको रिमूव किया गया है। साथ में जो डेफिनेशंस हैं कि क्या चीज इनकम बनेगा, जैसे आप देखेंगे एक्सपैट्रिएट्स हमारे देश में आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनको लिए इनकम स्टेटस क्या रहेगा, किस अवस्था में उनके ऊपर टैक्स लगेगी, इन चीजों में बहुत सारे असंगतियां थे, वो सारे असंगतियों को रिमूव किया गया है। क्लैरिटी आया है कि किस कंडीशन में उनको टैक्स भरना पड़ेगा और अगर भरना पड़ेगा तो कितने इजिली और कितने क्लियरली वो दे सकते हैं। हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो सिर्फ कैपिटल ही नहीं आता है, कैपिटल के साथ काम करने के लिए लोग आते हैं जो हमारे देश में आके कुछ दिनों के लिए काम करेंगे और फिर काम करके चले जाएंगे, तो उनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके लिए पहले कोई भी क्लियरिटी नहीं था। इन सभी चीजों को इस नए इनकम टैक्स में उनके ऊपर ये सारे क्लियर स्टेप्स लाए गए हैं। साथ में हमारे जो सेविंग्स वगैरह बहुत सारी चीजों का जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जिन पर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जम्पशंस थे, प्रोविजंस थे, जो लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता था कि हम अगर सेविंग्स करना चाहें तो किसमें इन्वेस्ट करें, तो वो रिटर्न देने के बजाय वो ज्यादा देखते थे कि इसमें टैक्स के छूट किसमें हैं, जो बिल्कुल विसंगत तरीके थे। तो उन सभी चीजों को क्लियर किया गया है इस इनकम टैक्स एक्ट में।
पुराने कानून में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे, जबकि नए कानून में एक टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका क्या मतलब है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कई सारे डिफरेंस थे कि साल का मतलब क्या होता है, जनवरी 1st से दिसंबर या 1st अप्रैल से 31 मार्च, उसको क्लियर कर दिया गया है। हर पर्पस के लिए साल का मतलब होगा 1st अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक। तो उसके अंदर जब हम टैक्स ईयर बोलते हैं तो टैक्स ईयर का मतलब है पहले असेसमेंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर, ये लोगों को कंफ्यूज करता था, इसीलिए अभी सिर्फ टैक्स ईयर का मतलब है कि द ईयर इन विच इनकम वॉज अर्न्ड, यानी जिस साल मैंने इनकम अर्न किया उसको उसी साल में ही टैक्स किया जाएगा और अलग से कोई असेसमेंट ईयर का सवाल नहीं रहेगा कि मैंने 2000 24-25 में मैंने अगर टैक्स अर्न किया तो 2024 में ही जो रेट था उस रेट में ही उसको उस साल असेस किया जाएगा। अगला कोई असेसमेंट ईयर की नहीं, अभी असेसमेंट ईयर तो ये वाला आ गया है या दूसरा कुछ चार साल चल रहा है, इन सभी चीजों का झमेला नहीं रहेगा। सो प्रीवियस ईयर बोल के जो था कि जिस साल चल रहा है उसका प्रीवियस ईयर, इन सारे जो डेफिनेशनल झमेला है क्लियर, सिर्फ एक ही है टैक्स ईयर, द ईयर इन विच इनकम हैज बीन जनरेटेड, उस साल में क्या रेट था, दैट इज द इनकम।
जी, तो ये भी एक सरलीकरण, एक प्रक्रिया जो हम बात कर रहे हैं कि जो नया अधिनियम आया है वो पुराने अधिनियम के तुलना में किस तरह बेहतर है, तो सरलीकरण कर दिया है सरकार ने इसका। अगला सवाल मेरा आपसे ये है शुभमोहन कि आयकर अधिनियम 2025 में वर्चुअल डिजिटल स्पेस और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के कॉन्सेप्ट भी शामिल किए गए हैं, ये क्या है, इन्हें क्यों लाया गया है और करदाताओं पर इसका क्या असर पड़ेगा?
अभी आपको जब बहुत सारे ऐसे एसेट की, पहले हमारे होते थे एक फिजिकल एसेट और एक फाइनेंशियल एसेट,
जी,
लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में एक वर्चुअल एसेट भी बहुत सारा बन गया है। वर्चुअल एसेट कौन से हैं? जो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो वर्ल्ड में, हालांकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड की तो टैक्सेशन की तो अभी बात नहीं हुई है, लेकिन जब हम किसी नए डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या किसी दूसरे और भी नए नए जो एसेट्स डेवलप कर रहे हैं, इन सारी चीजों को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसके लिए एक नए डेफिनेशन का जरूरत था। तो वर्चुअल एसेट यानी कि ये एसेट वो सेट्स हैं जो यू कैन नॉट टच एंड फील, लेकिन दे आर अवेलेबल इन द साइबर स्फीयर। हालांकि मैं क्लियर करना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी से हम इसको लिंक ना करें, क्योंकि भारत में भी क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन के उस सिस्टम्स में हम लोग अभी भी आगे चल रहे हैं और वो अभी वहां पे नहीं पहुंचे, लेकिन डिजिटल में बहुत सारे डिजिटल एसेट्स हमारे बन रहे हैं और उन सारी चीजों को टैक्सेशन करने का ये हम लोग उसके, जिसे कहते हैं उसका बुनियादी स्तर होता है कि उसका डिफाइन करना, उसका डिफिनेशन का वो वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर से किया गया है।
तो कह सकते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया में तकनीक का विकास हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो जो हमारे आयकर के जो हमारे नियम कानून है उनको भी उन बदलावों से, उन जो ये विकास हो रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वर्चुअल डिजिटल स्पेस और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इनको इस नए अधिनियम में शामिल किया गया है।
और इसी के चलते हम बहुत सारे, अभी हम देखेंगे कि इसके नए इस्तेमाल, इसके नए जरूरतें और इनकी नई खूबियां वो हमें बहुत जल्दी हमें मिलते जाएंगे। अभी जैसे भारत में हम कह रहे हैं कि हम GCC में हो या दूसरी चीजों में, हम AI के चलते हम लोग बहुत सारे नए नए चीजें आ रहे हैं, उन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर को अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा, और वो टैक्सेशन स्ट्रक्चर अभी हमारे पास थ्रू द न्यू इनकम टैक्स एक्ट आया है।
नए एक्ट में करदाता की जो वॉलंटरी कंप्लायंस है वो उसे कैसे बेहतर बनाता है और मुकदमेबाजी को कैसे कम करता है?
सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जो नए करदाताओं के लिए, सबसे पहली बात यह है कि कौन टैक्स देगा, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने होंगे, ये हमारे लिए सबसे पहले, जिसे कहते हैं हमें कोई भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर में आने से पहले नए करदाताओं के लिए सबसे पहली बात यह थी कि बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत पड़ रही थी, एक नया समरी जो उनको टैक्स का समझा दे, उनको नए किस्म का स्ट्रक्चर में उनको ले आए, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है समझा के दे। आपको याद होगा कुछ सालों पहले हमने एक सिस्टम शुरू हुआ था कि टैक्स पेइंग असिस्टेंट, क्या क्या असिस्टेंट्स होंगे जो असिस्टेंट्स हेल्प करेंगे, ये सब चीजें लोगों के मन में अपने आप में एक टैक्स के ऊपर एक भीति, एक संदेह बना देता है। और हम जब चाहते हैं कि नए टैक्स पेयर्स हमारे बीच में आए, हमारे साथ में जुड़ जाए, बिकॉज उसका टैक्स सिस्टम का अपने आप का बेनिफिट रहता है, तो ये सारी चीजें वे रोड ब्लॉक्स, उस रोड ब्लॉक्स को सिंप्लीफाई करने का इनकम टैक्स एक्ट का है कि भाई इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है। जितने सारे फॉर्म्स थे, बहुत सारे फॉर्म्स को सेटल कर दिया गया है, क्लीन कर दिया गया है, तो नए इनकम टैक्स पेयर्स के लिए लाइफ को काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया है।
शुभमोहन, आप हमारे साथ सुर्खियों में कार्यक्रम में जुड़े और प्रारंभ 2026 के बारे में और आयकर अधिनियम 2025 के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में